اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے قلندر شعور، صفحہ نمبر 107، ٹاپک کا عنوان ہے دوربین آنکھ۔ یہ جو ہم نے کل مطالعہ کیا، یہ اسی کے تسلسل میں یہ بات بیان ہونے لگی ہے۔ اس سے پچھلے دو پیراگرافس کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے اپنی صفات کا، اپنی لا متناہی صفات کا علم، یعنی جو علم بھی لا متناہی ہے، وہ انسان کو، آدم کو عطا کر دیا۔ اس وجہ سے آدم کی حیثیت فرشتوں سے افضل ہو گئی، بلکہ نہ صرف فرشتوں سے بلکہ کائنات میں موجود تمام انواع اور موجودات سے آدم افضل ہو گیا، اس لیے کہ آدم کے پاس اللہ کی صفات کا لامتناہی علم ہے۔ اب اس علم کو یہ چونکہ متوجہ نہیں ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، تو قلندر شعور ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کا یہ علم اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اللہ نے تو پھونک دیا ہوا ہے، اللہ نے یہ پورا سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے۔ آپ نے اور ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ سافٹ ویئر کا استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ یہ بات روزمرہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہماری نظر ایک متعین حد میں کام کرتی ہے، لیکن اگر نظر کی متعین حدود میں اضافہ کر دیا جائے تو نظر عام حالت میں جتنا دیکھتی ہے اس سے زیادہ فاصلے پر دیکھ سکتی ہے۔ مثلا ہم آنکھوں پر دوربین لگا لیتے ہیں، لگ دور بین، بین میں نے دیکھنا، بینائی کا لفظ اسی سے ہے، تو دور بین یعنی دور تک دیکھنا، خرد بین یعنی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا، وہ چیزیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی اسے ہم خوردبین کی مدد سے دیکھتے ہیں، اور جو چیز بہت دور ہے اسے دوربین سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیسے، یہ بتا رہے ہیں۔ مثلا ہم آنکھوں پر دوربین لگا لیتے ہیں، تو دوربین کے اندر جو لینزز لگے ہوتے ہیں، جو عدسے لگے ہوتے ہیں، وہ اس طول موج کو یعنی ویو لینتھ کو جو نظر کے لیے دیکھنے کا باعث بنتی ہے آنکھوں کے سامنے لے آتے، یعنی خوردبین ہو یا دوربین ہو، دونوں میں کیا کیا جاتا ہے کہ عدسوں کا استعمال کر کے نظر کے لیے کام کرنے والی فریکوینسیوں کی رینج کو اپنی آنکھ کے مطابق بنا لیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس بات کو یوں فرمایا کہ وہ ان کے طول موج کو، ویو لینتھ کو، جو نظر کے لیے دیکھنے کا باعث بنتی ہیں آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے مادی زون میں، مادی روشنیاں، مرئی روشنی اور مرئی چیزوں کی، کہ وہ ان کو آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ اب ہم میلوں فاصلے کی چیز دیکھ لیتے ہیں، اور کسی آدمی کی نظر اگر کمزور ہے، سامنے کی چیز اسے نظر نہیں آتی، تو وہ چشمہ لگانے کے بعد دور تک دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیشے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس کو سیکل کر لیں، سائیکل کا مطلب ہے اس کو دھار دے دیں، اس کو تیز کر دیں، اس کو بڑھا لیں، اگر آپ اس کو سائیکل کر لیں، اس کی طاقت بڑھا دیں، تو نظر दूर तक काम करने लगती है। जब आप शीशे के अंदर से मीलों मील देख सकते हैं, तो उस आंख से जिस आंख ने फरिश्तों को देखा और अल्लाह को देखा है, गैब की दुनिया में क्यों नहीं देख सकते? यानी गैब की दुनिया में भी तो लहरें ही काम कर रही हैं ना, फरिश्ते में भी लहरें काम कर रही हैं, अल्लाह की सिफात भी लहरें हैं। तो हम अगर अपनी नजर को सैकल कर लें, तो मादी शीशे की तरह क्या हम, यानी ये देखे तूले मौज नहीं बढ़ाया उन्होंने, शीशे ने क्या किया, उस तूले मौज को आपकी आंख के जोन में, गिरफ्त में लाने में मदद की। तो इसी तरह अगर हम अपने जहन का अदसा, शीशा या लेंस, इसको इस्तेमाल करना सीख लें, उसको फोकस करना सीख लेंगे, तो हजूर मुर्शिद करीम के इरशाद के मुताबिक इंशाल्लाह हम फरिश्तों को भी देख लेंगे और उन मखलूकात को भी जो गैर मरई हैं देख सकेंगे। फरमा रहे हैं हजूर मुर्शिद करीम कि ये ना समझा जाए कि आदम कोई ऐसी चीज है कि उसके अंदर कोई मखसूस सलाहियतें काम करती हैं और आदम की औलाद कोई ऐसी चीज है जिसमें वो सलाहियतें काम नहीं करती। इस जुमले को अंडरलाइन कर लें, ये बहुत कीमती जुमला है। क्या फरमाया कि ये ना समझा जाए कि आदम कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई मखसूस सलाहियतें काम करती हैं और आदम की औलाद उन सलाहियतों से महरूम है, ऐसा हरगिज नहीं है। जब आदम की शक्ल व सूरत उसकी नस्ल में मुंतकिल हुई और मुंतकिल होते होते मुझ तक और आप तक पहुंची, तो उसकी बातनी सलाहियतें भी तो हमारे अंदर मुंतकिल हो रही हैं ना। अगला टॉपिक है गोश्त पोस्ट का वजूद। आदम और हवा की औलाद में हर फर्द दरअसल आदम व हव्वा का अक्स, तमस्सुल और फोटो है। दोबारा सुने, आदम व हव्वा की औलाद में हर फर्द दरअसल आदम व हव्वा का अक्स, तमस्सुल और फोटो है। जिस तरह आदम के अंदर इल्मुल अस्मा सीखने की सलाहियत मौजूद थी, उसी तरह हर फर्द में वो सलाहियत अल्लाह की तरफ से वदियत है। हम बता चुके हैं कि असल इंसान रूह है और इंसान की जिंदगी के सारे तकाजे रूह से मुंतकिल होते हैं। ये जितने तकाजे हैं, जिंदगी के जितने भी तकाजे हैं, ये हमारे इनर सेल्फ से इनिशिएट होते हैं और हमारे जहन को मुंतकिल होते हैं और जहन से जिस्म को मुंतकिल होते हैं। जब तक इस गोश्त, इस जिस्म यानी गोश्त पोस्ट के लोथड़े को रूह जिंदा और मुतहर्रिक रहती है, ये गोश्त पोस्ट के जिस्म में हरकत बाकी रहती है, और जब रूह इस गोश्त पोस्ट के जिस्म से अपना रिश्ता मुनकता कर लेती है, तो गोश्त पोस्ट के जिस्म में कोई हरकत बाकी नहीं रहती। यह रूह वही रूह है जिसको अल्लाह ने अपनी नियाबत दी थी। आदम ने जन्नत में जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से सरताबी की, उसी वक्त रूह के ऊपर एक पर्दा आ गया। यानी ये पर्दा जन्नत में नहीं था, पर अगर इस पर्दे को हम हटा लें तो गोया हम वापस जन्नत में चले गए। और वो अमानत जिसकी बुनियाद पर वो कायनात में अशरफ था, पसे पर्दा चली गई। यही पर्दा जिस्मानी गोश्त पोस्त है। ये पर्दा क्या है? ये हमारा जिस्मानी गोश्त पोस्त का जिस्म जो है, ये असल में वो पर्दा है। इसीलिए जब तक ये पर्दा हमारी अकल पे पड़ा रहता है, हम दुनिया में खोए रहते हैं। इस पर्दे से जब हमारा ध्यान हटना शुरू हो जाता है, हम इस पर्दे को अपनी जगह पड़ा रहने देते हैं, ये अपना काम करता रहता है, और हम अंदर से अपने काम से लग जाते हैं, यानी कि हम अपनी सलाहियतों को उजागर करने लग जाते हैं। तो गोश्त पोस्त का जिस्म से हम आजाद होकर अपनी सलाहियतों का, उन सलाहियतों का जो अल्लाह रब्बे करीम ने बड़े खसूसी तौर पर हमारे अंदर फूंकी थी, उनका इस्तेमाल करना सीखना शुरू कर देते हैं। हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है, आगे फरमा रहे हैं कि जब तक किसी भी आदमजात की दिलचस्पियां इस जिस्म के साथ वाबस्ता रहती हैं, तो उसकी रूहानी सलाहियतें छुपी रहती हैं। और जब भी किसी आदमजात को इस बात का इल्म हो जाता है कि गोश्त पोस्त का जिस्म दरअसल नाफरमानी करने के जुर्म में एक पर्दा है, तो उसका जहन हकीकत की तलाश में मसरूफ हो जाता है। हकीकत की तलाश में मसरूफ जहन ही असल में कलंदर शऊर है। कलंदर शऊर इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो चीजों की हकीकत को खोजता रहता है, खोजता रहता है, खोजता रहता है। और ये तलाश उसे उस अमानत से बाखबर कर देती है जिस अमानत की वजह से कायनात के ऊपर इंसान को शर्फ हासिल है। हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं कि किसी इल्म को सीखने के लिए जरूरी है कि हम किसी उस्ताद को अपना रहनुमा बनाएं, और जिस तरह उस्ताद कहे बिला चूं चरां, बिला चूं चरां, इसका मतलब समझ लें। होता यह है कि जहां जहां हम अपनी मर्जी करते हैं उसे चूं चरां कहते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से ना समझे, जो बात जैसे समझाई गई है उसे वैसे ही समझे। उस्ताद जो कहे बिला चूं चरां, ज़हनी तौर पर, जबानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर उसको कबूल कर ले। जब कोई शागिर्द बनता है तो उस्ताद शागिर्द से कहता है पढ़ो अलिफ। अब शागिर्द कुछ नहीं जानता कि अलिफ क्या है, वो अपने उस्ताद की नकल में कहता है अलिफ, और धीरे धीरे उस्ताद की खाली की नकाली करते हुए वो इल्म सीखता चला जाता है। लेकिन ये रोज़मर्रा का मुशाहिदा भी है, हमारे तजर्बे में भी है कि हम जब फ़र्ज करें कि आप उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहेंगे तो जब उस्ताद के पास जाके कहेंगे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो वो आपको हरूफ़ तहजी से मुतारिफ कराने को कहेगा कि ये अल ए है, ये बी है। आप उससे बहस नहीं करते कि ये ए क्यों है, ये तो उर्दू के आठ को आपने लिख के काट दिया तो ये ए कहाँ हुआ। नहीं, आप ये नहीं कहते, आप खामोशी से उसको अलिफ ए कहते हैं, और फिर वो बी कहते हैं, फिर सी कहते हैं। पूरे हरूफ तहजी याद होने के बाद वो उनसे आपको हरूफ से अल्फाज बनाना सिखाता चला जाता है और आप सीखते चले जाते हैं। हजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर बच्चा पहले कदम पर उस्ताद से ये कहे कि अलिफ क्या है, तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। यानी अब ये सवाल है कि ये अलिफ क्या है, लेकिन अगर बच्चा पहले ही दर्जे पे बजाय उसको समझने के क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दे, तो वो इल्म ही सीख सकता। इसलिए कि जिस वक्त उस्ताद शागिर्द से कहता है पढ़ो अलिफ, तो उसकी जहनी सकत, उसकी जहनी इस्तदाद इतनी ही होती है कि वो जवाबन कहे अलिफ। हम कितने भी पढ़ लिख कर फाजिल हो जाएं, कितनी ही डिग्रियां हासिल कर लें, अमानत और रूहानियत के लिए हमारी पोजीशन एक ऐसे शागिर्द की है जो पहली मर्तबा मकतब में दाखिल होता है। ये जरा देखें क्या लफ्ज लिखा है कि अमानत और रूहानियत, यानी ये दोनों एक ही चीज है। रूह के बारे में जो अलूम हैं उन्हीं को अल्लाह ने अपनी अमानत कहा है। वो सलाहियतें जो अल्लाह ने आपके अंदर मुंतकिल की वो अल्लाह की अमानत ही तो हैं। हम उस अमानत को समझने का जो अमल है इसी का नाम हमने रूहानियत रखा हुआ है, और इसी को जानना, क्योंकि हमें पहले डेफिनेशन आई थी कलंदर शऊर की कि ये अंबिया कराम की तर्ज फिक्र है, ये अल्लाह की तर्ज फिक्र है। इसी तर्ज फिक्र को अलिया कराम ने अपनाया और इसी तर्ज फिक्र के हामिल बंदे को कलंदर कहते हैं, जो कलंदर शऊर से आरास्ता हो। तो देख लीजिए कि अमानत और रूहानियत के लिए हमारी पोजीशन एक ऐसे शागिर्द की है जो पहली मर्तबा मकतब में दाखिल होता है। देखें ना, हम दुनियावी अलूम के कितने भी चैंपियन हो जाएं, लेकिन जब हम जाहरी अलूम से हटकर बातनी अलूम की तरफ कदम रंजा करते हैं तो दरअसल हमारी हैसियत उस छोटे बच्चे की होती है जो अब एक नया इल्म सीखने के लिए जानुए तलमस तह कर रहे। इसी के तसलसल में हजूर मुर्शिद करीम अल्लाह मियाँ की जेल के उन्वान से एक बात फरमा रहे हैं कि आदमी जब नियाबत और खिलाफत की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके ऊपर आलाम और मसाइब की गिरफ्त टूट जाती है। अब गौर करें कि आपने आज तक यही सुना है कि जब बंदा रूहानियत में आता है, फकीरी में आता है जी, उसके ऊपर बड़ी मुसीबतें आती हैं। और हजूर मुर्शिद करीम क्या फरमा रहे हैं कि आदमी जब नियाबत और खिलाफत की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके ऊपर आलाम और मसाइब की गिरफ्त टूट जाती है। आलाम का कि वाहिद जो है ये जमा है, आलाम अलम से है, दुख से है, तकलीफ से है, मसाइब मुसीबत की जमा है, मसाइब तो उसके ऊपर से दुख और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा रूहानियत के रास्ते पे चलते हुए ये समझता है कि उसके ऊपर आलाम और मसाइब बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है कि वो अंदर से इस रास्ते पे नहीं आया। ये अंदाजा करें, सादा सा जुमला है लेकिन आप हमारे और आपके इस बने हुए जहन पे एक इंतहाई कारी जर्ब लगाई गई है। फरमा रहे हैं कि जब बंदा नियाबत और खिलाफत की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके ऊपर आलाम और मसाइब की गिरफ्त टूट जाती है। खालिक कायनात चूंकि हर चीज से बेनियाज और हर किस्म के हालात थे मावरा है, इसलिए जब किसी बंदे के अंदर खालिक कायनात की सिफात करवट बदलती हैं तो उसके ऊपर वही कैफियात वारिद होती हैं जो अल्लाह की सिफात का तकाजा हैं। आदम को अल्लाह ने अपने इनाम और इकरामात से नवाजा, नवाज कर जन्नत में रखा और फरमाया कि आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो जहां से दिल चाहे खुश होकर, क्या खुश होकर खाओ। लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम्हारा शुमार ऐसे लोगों में होगा जो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यानी तुम खुद पे जुल्म कर बैठोगे। आदम से सब्र ना हो सका, ये बेसब्री जो है ये आदम का शौरी विरस है, और वो अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो गया। जैसे ही आदम नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ, रोशनी की जगह तारीकी ने ले ली, खुशी की जगह गम छा गया, आज़ादी की जगह कैदो बंद ने अपने पंजे गाड़ दिए, और आदम नहायत हसरत व यास में जन्नत छोड़ने पर मजबूर हो गया। बावजूद इसके कि आदम ने अल्लाह की नाफरमानी की और जन्नत जैसी नेमत से उसने कुफरान किया, अल्लाह ने अपनी रहीमी और करीमी की सिफत से फिर आदम के ऊपर फजल किया। देखे ना, जब उसे गलती हुई तो उसको डिस्कार्ड नहीं कर दिया। तस्खीर कायनात से मुतालिक अल्लाह ने जो खजाने अता फरमाए थे, आदम को उनसे महरूम नहीं किया और फरमाया कि तुम्हारा वतन जन्नत है, तुम जब चाहो अपने वतन वापस आ सकते हो, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि नाफरमानी के दायरे से बाहर आ जाओ, यानी शैतान की बात मानने से बाज आ जाओ। क्या नाफरमानी की? शैतान की मानी वहां पे। हम अपने मुंतखब लोग भेजते रहेंगे, वो तुम्हें मतवज्जो करते रहेंगे, वो तुम्हें ठीक नहीं करेंगे, वो तुम्हें सिर्फ तवज्जो दिलाएंगे कि तुम एक अजीम खजाने के मालिक हो, हमारे ये पाकीजा बंदे उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारे लिए कायदे और जाब्ते बनाएंगे ताकि तुम आसानी के साथ अपने वतन में दाखिल हो जाओ। सॉरी। और ये जो जन्नत के खिलाफ तुम असफल साफिलीन की जिंदगी बसर कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए जेल खाना है। अगर तुमने जिंदगी में, यानी इस जेल खाने में, इस जेल के अंदर अपनी जिंदगी में अपने और जन्नत के दरमियान पर्दे को नहीं हटाया, तो जन्नत तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। कुदरत ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, और जालिम, सरकश, नाफरमान नौ इंसानी की हिदायत के लिए 124,000 पैगंबर भेजे, और अपनी सुन्नत कायम रखने के लिए पैगंबरों के वारिस औलिया अल्लाह का सिलसिला कायम किया, ऐसा सिलसिला जो कयामत तक जारी रहेगा। हर आदमी जो जरा सा भी शऊर रखता है, हर वक्त इस बात का मुशाहिदा करता है कि जिंदगी का हर लम्हा मर रहा है। एक लम्हा मरता है तो दूसरा लम्हा पैदा होता है, दिन मरता है तो रात पैदा होती है, बचपन मरता है तो लड़कपन पैदा होता है, लड़कपन मरता है तो जवानी पैदा होती है, और जवानी मरती है तो बुढ़ापा पैदा होता है, और जब बुढ़ापा मरता है तो खूबसूरत मूर्ति का एक एक उज्व मट्टी के जर्रात में तब्दील हो जाता है। वो हड्डियां जिनके ऊपर इंसानी ढांचे का दारो मदार है, राख बन जाती है। दिमाग, ये जो ब्रेन, ये ग्रे मैटर है जिस पर इंसानी अजमत का दारो मदार है, और जिस दिमाग के ऊपर इंसान अकड़ता है और दूसरों के ऊपर जुल्म करता है, खुद को खुदा कहने लगता है, उसको भी मट्टी खा जाती है, और मट्टी के जर्रात के बने हुए इस जैसे, मट्टी के जर्रात से बने हुए उसी जैसे दूसरे इंसान उस दिमाग को अपने पैरों तले रौंदते हैं। मेरा ख्याल है यहां रुक जाते हैं। जी जनाब, ये जो आज आपने बात मुतालिया फरमाई, इसके हवाले से कुछ वजाहत दरकार हो तो हाजिर हूं।
अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि जैसे हम रूहानियत में आए तो आजमाइशों के पहाड़ हम पे वारिद हो गए, तो इसका मतलब ये होता है कि वह अंदर से सिंसियर नहीं होते।
असल में वो बात नहीं समझे। देखें, दुनिया इस्तेमाल की चीज़ है, आप उसे इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह दे रहा है तो इस्तेमाल करेंगे ना। अल्लाह नहीं दे रहा और आप अल्लाह के साथ जिद कर रहे हैं कि नहीं मैंने लेनी है, तो ये है कश्मकश, ये है वो फसाद। देखें ना, जब आप अल्लाह की मर्जी पे चलना सीखते हैं, अल्लाह एक चीज़ दे रहा है आप उसे खुश होकर इस्तेमाल करते हैं, नहीं दे रहा तो आप तब भी खुश हैं। मुझे बताइए, मसाइब आलाम और मसाइब जो हैं उसकी जड़ क्या हुई? मेरी मर्जी। और मर्जी का लफ्ज जो है ये तो मर्ज से है। अरबी कायदा है कि जब आप छोटी ये किसी लफ्ज के आखिर में लगाते हैं तो उसकी मतलब है मेरी। लन तरानी नी, छोटी ये लग गई ना, यानी तू मुझे नहीं देख सकता, यानी मर्जी, मेरा मर्ज। हमारा असल मर्जी अपनी मर्जी है। अगर हम अपनी मर्जी से बाजाना सीख लेंगे, जो हो रहा है उसको उस तरह हैंडल करेंगे, जो हालात और वाक्यात हमारे सामने आएंगे, अल्लाह ने हमें अक्ल व शऊर, फहम व फिरासत किस मर्ज के लिए दी है, इसीलिए कि इन हालात को हैंडल करें, उसके साथ एडजस्ट करें। मैं ये बात कई बार अर्ज कर चुका हूँ, तीन जुमले खास तौर पे याद रखने के हैं, इन्हें हिर्ज़े जां बना लें। मेरी फहम के मुताबिक कुरान हकीम की तालीमात का खुलासा इन तीन जुमलों में मैंने किया था। क्या? अपने फराइज में इन्हमाक हासिल करें, हकूक को छोड़ दें, हकूक खुद ब खुद पूरे होंगे। दूसरा, मसाइल को हल करें, शूट द प्रॉब्लम। तीसरा, एडजस्ट करना सीखें। अगर हम ये तीन चीजों को अपना लेंगे तो आप गौर करें कि हमारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। मिसाल लें, आप घर में देखें ना, आप अपने फराइज में नमाक रखते हैं, आपकी जौजा जो है वो अपने फराइज में नमाक रखती हो, आप उसको उसके फराइज की अदाई में मदद करें, वो आपको आपके फराइज की अदाई में मदद करें। मुझे बताएं घर का माहौल कैसा हो जाएगा।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
अब दूसरा नुक्ता है कि आपस में मिल बैठकर ज़ेहनी हम आहंगी के साथ मसाइल को हल किया जाए। हैं, हम लोग बजाय मसले के एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। एक दूसरे को नहीं शूट करें, मसले को शूट करें। इतनी फहम तो होनी चाहिए ना। अब कुछ मसाइल, कुछ वाक्यात ऐसे होते हैं जहाँ एडजस्ट करना होता है। मसलन अब सर्दी आई, अब सर्दी को क्या करेंगे आप? जाहिर है आप खिड़कियाँ बंद करेंगे, दरवाजे बंद करेंगे, पंखे बंद करेंगे, लिहाफ निकालेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, फिर भी नहीं गुजारा होगा तो हीटर जलाएंगे या अंगीठी सुलगाएंगे। ये क्या किया? ये एडजस्ट किया आपने। अब गर्मी आ गई तो क्या करेंगे? अब ये हीटर बंद करेंगे, कपड़े हटा देंगे, रज़ाई हटा देंगे, पंखा चला लेंगे, खिड़कियां खोल देंगे, बार बार नहाएंगे, वरना फिर एसी इस्तेमाल करेंगे। हाँ या नहीं? यानी कि ये हालात ही तो हैं, गर्मी सर्दी के हालात, तो आप उसके साथ एडजस्ट करते हैं या नहीं करते? हम दो बंदे आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? तो कलंदर शऊर का हामिल बंदा सबसे पहले चूंकि खुद पे तवज्जो देता है, वो खुद को जानने लगता है, वो खुद अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने फराइज पूरे करता है, जहाँ कोई मसला आता है फर्ज की अदायगी में उसको हल करता है, अगर वो नहीं हो सकता तो एडजस्ट करता है। तो मसाइब और आलाम कहाँ से आ गए? इन तीन जुमलों का ना जानना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। हमारी तर्ज फिक्र में चूंकि ये बातें गलत तरह से बिठाई गई हैं, हमें तो हकूक का बाजा बजा दिया गया कि जी हकूक अल्लाह तो हकूक लिबाद। भाई फराइज अल्लाह और फराइज लिबाद क्यों नहीं कहते हम? देखे ना, अगर शौहर अपने फराइज अदा कर रहा है तो बीवी के हकूक अदा हो रहे हैं, अगर खामन اپنے فرائض پورے کر رہا ہے تو ایز اے فادر وہ جو بھی فرائض پورے کر رہا ہے تو بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. بچے اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا والدین کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. آٹومیٹک ہے, ایک کا فرض ہی دوسرے کے حقوق ہیں. آپ حقوق کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اگلا کہتا ہے چال لو ہے, ٹھیک ہے نا.
صحیح فرمایا,
چلیں بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی,
ٹھیک ہو گیا,
بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے سب, اللہ حافظ.
ایکسکیوز می, مجھے ایک سوال آپ پوچھنا ہے پلیز.
جی جی ارشاد
سر, یہ 110 پہ جو بات آئی تھی کہ اس راستے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے قاعدے اور ضابطے بنائیں گے تاکہ تم آسانی کے ساتھ اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ, سر یہ وطن جو ہے یہ باطن سے ہے یا
ظاہر ہے؟ جی ہاں
ہے نا, تو یعنی باطن کی طرف.
جی ہاں میں سمجھا, آپ قاعدے اور ضابطوں کا پوچھیں گے تو یہ جو مثلا جیسے آپ کے سلسلے میں یا حیو یا قیوم کا ورد تجویز کیا گیا, مراقبہ کرنا سکھایا گیا یا سکھایا جا رہا ہے, ساتھ میں آپ کو قلندر شعور کا پورا لٹریچر حوالے کر دیا, یہ سب قاعدے اور ضابطے ہی تو ہیں کہ آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے انر کی طرف توجہ دیں, اور کیا کہا جا رہا ہے.
جی سر
ٹھیک ہو گیا نا, تو ظاہر ہے باطن ہی میں سب کچھ ہے نا, جنت کہاں ہے؟
باطن میں. ہاں جی باطن.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو,
بہت شکریہ بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟
ٹائم ہو گیا کہ رہتا ہے ابھی؟
تقریباً ہو ہی چکا.
ایک ایک چھوٹا سا سوال ہے سر.
ارشاد,
اگر بچہ پہلے قدم پر استاد سے یہ کہے کہ الف کیا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے سر وہ سوال استاد سے نہیں پوچھا چاہیے؟
غلط, یہاں پہ اصل میں ان کا مطلب یہ کہ اگر بچہ بحث کرے, بحث نہیں کرے سوال پوچھیں, علم حاصل کرنے کے لیے سوال ہی تو ضروری ہے. یہاں پہ یہ محاورتن کہا گیا سوال کرے, سوال کرنے کا مطلب بحث کرے, یہاں پہ مراد ہے بحث کرنا. دیکھیں نا جیسے میں الف اب بچے کو کہہ رہا ہوں, یہ سی, وہ کہتا نہیں تو سیدھی لائن ہے, وہ تو بچے کا سوال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بحث کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے ایک بات سوال پوچھا نا, میں نے اس کا جواب عرض کر دیا. اب آپ نے سوال کیا, میں نے مرشد کریم سے میرا خیال ہے اتنے سوال کیے, پوری دو کتابیں بھر دی میں نے, تو کیا انہوں نے کوئی منع کیا مجھے سوال کرنے سے؟ نہیں, سوال پوچھنا سالک کا فرض ہے, یہ استاذ کا فرض ہے کہ وہ سالک کا اپنے شاگرد کے سوال کا جواب دے, ورنہ استاذ کس چیز کا. اگر وہ بچے کے ذہن کی گرہ نہیں کھول پا رہا, لیکن اگر بچہ محض بحث کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے ڈانٹے, بلکہ فرض بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟
نہیں سر.
یعنی بحث و مباحثہ نہیں کرنا, اگر ٹیچر کے ساتھ آپ بحث کریں گے تو آپ الجھ جائیں گے, جو بات وہ کہہ دے اس پہ غور کریں. سوال آتا ہے, میں نے نہیں پوچھا سوال کہ جی کہ انانی میں کیسے ختم کروں, تو بنے کا میں کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو اگر میں اتنے سوال نہ پوچھتا تو کیا میں ان سے اتنی کچھ باتیں سیکھ سکتا تھا؟ مسئلہ وہی ہے میری جان کہ ہمارے ہاں ایک ایک لفظ میں کئی کئی تو مطلب بھرے ہیں. کہیں پہ سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے بات پوچھنا, اور کہیں سوال کرنے کا مطلب ہے بحث کرنا, ہاں یا نہیں؟ بس اتنا سا فرق سمجھ لے, کوئی باقی سب ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے.
تھینک یو سو مچ سر,
اللہ حافظ.